नमस्कार भारत, 7 दिसंबर दिन शनिवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। एयरटेल के 32 करोड़ यूजर्स के डेटा पर था खतरा, बीबीसी ने बग को लेकर कंपनी को किया आगाह।
बीबीसी उनको ये बात बताया कि ऐसा आपके पास प्रॉब्लम है, तो जैसे उनको पता चला उन्होंने इसको फिक्स कर दिया, अब ये खतरे में नहीं है।
उन्नाव रेप केस की पीड़िता की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत, गांव में मातम, जांच में जुटे पुलिस अधिकारी बोले।
सभी पांचों व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, पुलिस की प्राथमिकता है जो भी करने वाले लोग हैं उन्हें हम लॉजिकल एंड तक ले जाएं।
और तेलंगाना हाई कोर्ट का आदेश, सोमवार तक सुरक्षित रखे जाएं एनकाउंटर में मारे गए रेप अभियुक्तों के शव, पुलिस के दावों पर कहीं खुशी कहीं सवाल।
कमजोर कहानी लग रही है, मैं कहूंगा कि बड़ा अनप्रोफेशनल ढंग से उन्होंने सारा काम किया है, ऐसी परिस्थितियां उन्होंने होने ही क्यों दिया जहां क्यों।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, तन्वी से। उन्नाव रेप मामले की पीड़िता की कल देर रात दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। पीड़िता को गुरुवार को इलाज के लिए इस अस्पताल में एयर एम्बुलेंस के जरिए लखनऊ से दिल्ली लाया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक उनका शरीर 90% से ज्यादा झुलस गया था। सफदरजंग अस्पताल के बर्न एंड प्लास्टिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर शलभ कुमार ने बताया है कि उनकी मौत रात 11:40 पर हुई। डॉक्टर शलभ कुमार ने बताया कि पीड़िता की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद के एक वेटनरी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए 4 अभियुक्तों के शवों को सोमवार तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट इस मामले में सोमवार सुबह 10:30 सुनवाई करेगा। महिला और मानवाधिकारों संगठनों ने इस मामले को लेकर कोर्ट में कल याचिका दाखिल की थी। अमेरिका के फ्लोरिडा के पेंसाकोला में स्थित एक नौसैनिक अड्डे पर कल एक सऊदी ट्रेनी ने 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने कहा कि बंदूकधारी साइट पर ट्रेनिंग ले रहा सऊदी एयरफोर्स ट्रेनी था। गोलीबारी की घटना के बाद उन्हें नौसेना के अधिकारियों ने मार गिराया। शरीफ कार्यालय के हवाले से हमले में 2 अधिकारियों समेत 8 अन्य के घायल होने की खबर है। शूटर ने एक हैंडगन का इस्तेमाल किया था। इस घटना को एक घोर अपराध बताते हुए सऊदी अरब के किंग सलमान ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। अपने बयान में किंग सलमान ने कहा कि उनका देश फ्लोरिडा राज्य में हमले की जांच में मदद कर रहा था। बंदूकधारी सऊदी वायुसेना का सदस्य था जो प्रशिक्षण के लिए अमरीका गया था। उसने पुलिस की गोली से मारे जाने से पहले 8 अन्य लोगों को घायल कर दिया। इससे पहले एक अमरीकी नौसैनिक ने हवाई स्थित मिलिट्री बेस में 2 नागरिकों की हत्या कर दी थी। उत्तरी पूर्वी केन्या में एक बस पर बंदूकधारियों के हमले से कम 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं दूसरी ओर इस हमले की जिम्मेदारी सोमाली इस्लामी चरमपंथी समूह अल शबाब ने ली है, जिसने दावा किया है कि हमले में 10 लोग मारे गए हैं। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बीबीसी को बताया है कि सशस्त्र हमलावरों ने इथियोपियाई सीमा पर लगे मंडेरा की ओर जा रहे बस वजीर जिले में निशाना बनाया। ब्रिटेन के आम चुनाव में अब 1 सप्ताह से भी कम रह गया है। अपने अपने प्रचार अभियान के सिलसिले में मौजूदा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन टेलीविजन डिबेट में शामिल हुए। इस डिबेट के दौरान ब्रेक्सिट पर कॉर्बिन ने कहा कि किसी ने भी नौकरी में कटौती, यूरोप से व्यापार में कटौती के लिए वोट नहीं दिया था। उन्होंने ये साफ किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे एक नई डील लाएंगे। वहीं जॉनसन ने जोर देकर कहा कि यूरोपियन यूनियन से अगले महीने अलग होने से ब्रिटेन का कारोबार बढ़ेगा और इमिग्रेशन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। जेरेमी कॉर्बिन ने इस दौरान एक दस्तावेज भी पेश किया जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि ये बोरिस जॉनसन के ब्रेक्सिट डील की सरकारी एनालिसिस है। इस दस्तावेज के मुताबिक उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच भी कस्टम और सिक्योरिटी चेक के नियम लागू होंगे। हालांकि बोरिस जॉनसन ने हाल ही में ऐसी अटकलों को खारिज किया था। कंजर्वेटिव पार्टी के पूर्व चेयरमैन लॉर्ड पैटन के मुताबिक फैक्ट्स कुछ और कहानी कह रहे हैं।
We are in the middle of a climate and ecological emergency.
माफ कीजिए, ये गलत क्लिप है। अगर प्रधानमंत्री हमें किसी चीज के बारे में सच बताते हैं तो यह आकस्मिक है। आज भी वह आयरिश सी के नीचे की सीमा के बारे में बातें कर रहे हैं। ये थे कंजर्वेटिव पार्टी के पूर्व चेयरमैन लॉर्ड पैटन के शब्द।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। एक उम्मीद थी जो गुरुवार से वेंटिलेटर पर थी, वो टूट गई। ये उम्मीद उन्नाव रेप पीड़िता की जिंदगी से जुड़ी थी, जिन्हें गुरुवार को कथित तौर पर जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। उन्हें गुरुवार को ही उन्नाव से लखनऊ और फिर दिल्ली लाया गया था। कल देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कानून के कई जानकारों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं को कल ही एक और उम्मीद टूटती दिखी, जब तेलंगाना पुलिस ने जानकारी दी कि एक एनकाउंटर में हैदराबाद रेप मामले के 4 अभियुक्तों की मौत हो गई है। हालांकि इस मामले को लेकर तेलंगाना पुलिस को खूब बधाई भी मिली, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। नमस्कार भारत में हम इन दोनों खबरों की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे बीबीसी की एक खास पड़ताल से, जिसके जरिए एयरटेल के 32 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का डेटा सुरक्षित हो गया है। एक स्वतंत्र शोधकर्ता ने एयरटेल के नेटवर्क में एक बग की तलाश की। इसकी वजह से करोड़ों यूजर्स का पर्सनल डेटा खतरे में था। हैकर्स उनकी जानकारी निकाल सकते थे। बीबीसी ने एयरटेल को इसकी जानकारी दी। इसके बाद कंपनी ने इसे ठीक किया। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बीबीसी संवाददाता शादाब नाजमी ने की। क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता सिंधु वासनी ने शादाब से बात की।
जो डेटा जो बेसिकली सामने आ सकता था, वो लोगों का नाम, उनका पता, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका घर का पता।
इसके खतरे क्या क्या हो सकते हैं, यानी अगर मेरा पर्सनल डेटा किसी थर्ड पार्टी के हाथों में चला गया तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं?
देखिए, आप जब पर्सनल डेटा की बात करते हैं तो आपका जो डेटा होता है वो नाम, पता, आपका डेट ऑफ बर्थ और मतलब ये सारी चीजें काफी सिंपल लगती है, आपको लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं। बट जब ये बाहर हो जाता है, ये एक्सपोज हो जाता है, तो आप जैसे देखेंगे कि अगर आपका पर्सनल ईमेल है और आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो जैसे अगर आपका कोई सोशल मीडिया का प्रोफाइल है या फिर आपका कोई प्रोफेशनल अकाउंट है जहाँ पे आप लॉगिन करते हैं, तो आप जब देखेंगे जब उसको आप रीसेट करते हैं पासवर्ड को, तो आपको वो आपका पर्सनल ईमेल मांगता है और आपका डेट ऑफ बर्थ मांगता है, जो सब बहुत सारे आप सही डालते हैं उसमें। तो इससे ये भी खतरा हो सकता है कि आपके जो प्रोफेशनल अकाउंट्स है या जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसमें ब्रीच हो सकता है, कोई इसके में घुसने की कोशिश कर सकता है। आपके ईमेल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो भी एक्सेस किया जा सकता है। उसके अलावा अगर वही है कि अगर आप जानने आप घुसने की कोशिश करें तो एक्सपर्ट के नजरिए से तो बहुत कुछ हो सकता है कि आपके आपके ईमेल और आपके डेट ऑफ बर्थ और आपका जो आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें मिला करके कॉम्बिनेशन बना करके, तो ये आपके जितने भी अकाउंट्स हैं प्रोफेशनल, सोशल मीडिया, इवन बैंकिंग, इट कुड बी ऐसा हो सकता है कि कोई बैंकिंग में भी घुसा है। लेकिन अगर ये कोई आम आदमी के लिए काम काफी मुश्किल होगा, लेकिन अगर ये एक्सपर्ट हैकर्स के हाथों में लग गया तो बहुत कुछ आपका मतलब बहुत कुछ आपका जो डेटा है वो खतरे में पड़ सकता है। देखिए, अगर आप ट्राई की रिपोर्ट देखें जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, सितंबर 2019 का जो डेटा है, उसके मुताबिक एयरटेल जो है उसके 325 मिलियन जो कि 32 करोड़ के करीब सब्सक्राइबर बेस है उनका, वो थर्ड नंबर पे आते हैं। आपको वोडाफोन आइडिया मिला के, वोडाफोन आइडिया के आई थिंक 370 मिलियन है तकरीबन 37 करोड़, और रिलायंस जियो के 35 करोड़, जो 355 मिलियन है। तो जब ये पता चला, जब हम लोगों ने डिग किया तो पता चला कि जितने भी एयरटेल के सब्सक्राइबर हैं उनका डेटा रिस्क पर था, कि जितने भी लोग एयरटेल का फोन यूज करते हैं तो उनके वो सारे लोग वल्नरेबल थे, उन लोग का डेटा जो था खतरे में था। वैसे अभी तो एयरटेल ने उसको फिक्स कर दिया है। अभी जब बीबीसी उनसे उनको ये बात बताया कि ऐसा आपके पास प्रॉब्लम है, तो उन्होंने इसको जैसे उनको पता चला उन्होंने इसको फिक्स कर दिया, अब ये खतरे में नहीं है। लेकिन तब तक 325 मिलियन तकरीबन 32 करोड़ लोग जो सब्सक्राइबर थे एयरटेल के, उनका डेटा खतरे में था।
एयरटेल ने इस बारे में कुछ कहा है, कोई बयान आया है एयरटेल की तरफ से?
एयरटेल ने ये माना है कि उनके एपीआई जो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है उसमें थोड़ा कुछ इशू था जिस वजह से ऐसा हुआ, और उन्होंने जैसे ही ये इशू उनको रेज किया गया उस इशू को उन्होंने मतलब को ठीक किया। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो काफी कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्चुअली उन्होंने ये कहा कि जो डेटा है उनके पास लोगों का वो बिल्कुल सेफ है, और वो हर रोज ऐसा काम कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों का डेटा हमेशा सेफ बना रहे।
क्या मेरे और आपके जैसे लोग, क्या आम लोग किसी तरीके से ये समझ सकते हैं कि उनके फोन में ऐसा कोई बग है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये पता लगाया जा सके?
देखिए, पता तो आपको चलेगा नहीं, क्योंकि ये अभी तक हम भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो जब तक कोई एक्सपर्ट हैकर या फिर कोई सिक्योरिटी रिसर्चर आपको ये बताए, तभी ये पता चलेगा।
ये थे बीबीसी संवाददाता शादाब नाजमी। और अब बात उन्नाव रेप मामले की पीड़िता की, जिनकी कल रात दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक रात 11:10 पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन रात 11:40 पर ये कोशिशें नाकाम हो गईं। पुलिस के मुताबिक रेप पीड़िता को 5 लोगों ने जिंदा जलाने की कोशिश की थी। पीड़िता के गांव की बात करें तो वहां मातम है। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने उन्नाव में उनके गांव का दौरा किया, सुनिए उनकी रिपोर्ट।
उन्नाव शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर बिहार थाने के अंतर्गत आता है हिंदूपुर गांव। गांव के भीतर प्रवेश करने के बाद कुछ ही दूरी पर पीड़ित लड़की का कच्चा मिट्टी फूस और खपरेल का बना घर है। लड़की के बुजुर्ग पिता घर के बाहर चुपचाप खड़े हैं। कहते हैं कि हमेशा मैं स्टेशन तक उसे छोड़ने जाता था, उस दिन पता नहीं क्यों लड़की अकेले चली गई।
कई बार हम उनका जो है गाड़ी में बैठा रहे, वो आपकी बार पता नहीं का दिमाग में हुआ तो वह जो है तुम अकेले पन चल दी।
बताई नहीं आप लोगों से हम जा रहे हैं?
कोई बात नहीं, बूढ़ा कर के महतारी लगे पगड़ी रही और बस उठी अपन चली।
तो आपको पता था कि उसकी डेट है कोर्ट में जाना?
हाँ, नहीं संध्या को बताया ना है कि कार हमका जाएगा, तो हमका ये थोड़े मालूम रहा कि गाड़ी नहीं है कि बसते नहीं है।
अच्छा,
फिर सब रहे जो है भी चली गई। जब यह घटना हुई गई तो वहाँ गए दिख जाए।
लड़की की पड़ोस के ही एक लड़के से जान पहचान थी और बताया जा रहा है कि उन दोनों ने प्रेम विवाह भी किया था, लेकिन बाद में रिश्ते खराब हो गए। लड़की ने इसी साल मार्च में लड़के और उसके एक दोस्त के खिलाफ गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिनमें से मुख्य अभियुक्त जेल गया था और कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूट कराया था। एक बार फिर उसे गिरफ्तार किया गया है। लड़की की भाभी बताती हैं कि दोनों ने कब शादी की थी इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी।
हमें नहीं मालूम था, तो सब कुछ हो गया जब लड़ाई झगड़ा होने लगा तब मालूम हुआ था। जब आके दरोजे मारा पीटा था तब मालूम पड़ा है। हमें लोग को नहीं मालूम था पहले से। जब मालूम हुआ तो जब हम लोग समझाना चाहे सब कुछ वो करना चाहे तो तब मार पीट करना चाहे, तब आके धमकी दिया गाँव ढील दो, गांव में ना रहो, लड़की को खेत दो, लड़की को यहां ना रखो।
लड़की के घर से करीब 0.5 किलोमीटर की ही दूरी पर मुख्य अभियुक्त और इस मामले में पकड़े गए अन्य अभियुक्तों का घर है। एक मंदिर के बाहर कई महिलाएं जुटी हुई हैं और बुरी तरह से रो रही हैं।
हमारे भाई को साजिश के द्वारा फंसाया जा रहा है।
हमको जांच चाहिए सर, हमको न्याय चाहिए। अगर हमको जांच चाहिए, सीबीआई की
इनमें से ज्यादातर महिलाएं वो हैं जिनका पकड़े गए अभियुक्तों से कोई न कोई रिश्ता है। इनका आरोप है कि सभी को इस मामले में फंसाया गया है। मुख्य अभियुक्त शिवम त्रिवेदी की मां कहती हैं कि उनके बेटे ने न तो शादी की थी और न ही इस घटना में शामिल था।
कोर्ट मेरी अगर की होती तो स्टाम्प पेपर होता, उसका मोहर जज के होते। तो दूसरी बात, अगर उसको पक्की आके शादी होती तो उसको ये सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं देती, वो स्वयं आ जाती मेरे घर में। मैंने अपने लड़का एक रात को नहीं छोड़ा, 8 बजे के अंदर घर नहीं आया, हमने तहलका मचा दिया, अपने लड़के को कंट्रोल करे थे हम।
इस मामले में गांव की प्रधान शांति देवी के पति और उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है।
यही की तो जाँच हो, उसने लगाया गलत कार भी किया, उसने भी आगे मैं लगा दी, तो हमारे लड़के आदमी की जाँच हो, जिस 5 आदमियों की जांच हो, जांच में अगर मेरा लड़का आदमी अगर सही नहीं निकला तो मेरे लड़के आदमी की फांसी दे दी।
हमारा कलेजा फट रहा, हम भी जान दे देंगे हमारी लड़के।
गांव में लोग इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों को इस बात पर भी आपत्ति है कि अन्य लोगों के अलावा मीडिया भी पीड़ित पक्ष के प्रति ज्यादा हमदर्दी दिखा रहा है।
कल से मैं बराबर न्यूज देख रहा हूँ, इनके लोगों की कोई बात नहीं दिखाई गई। कम से कम 20 लोग आ चुके, बात कर चुके इन लोगों से, और 20 लोग इंट्रोडक्शन इन लोगों से ले चुके, पर किसी का कोई इसमें नेगेटिव दिखाया जा रहा, खाली एक ही पक्ष को दिखाया जा रहा, सब उन्हीं का है जो है। ऐसा नहीं एक तरफ से गलती होती, गलती हर तरफ से होती है।
वहीं पुलिस का कहना है कि घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है। IG कानून व्यवस्था प्रवीण कुमार कहते हैं,
पीड़िता के द्वारा जो बयान दिए गए उसके क्रम में सभी 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस की प्राथमिकता है शीघ्रता से इस घटना का जो भी करने वाले लोग हैं उन्हें हम लॉजिकल एंड तक ले जाएं।
बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, दोषी कौन है इसका पता बाद में चलेगा। लेकिन गांव में लगभग हर व्यक्ति दुखी है क्योंकि दोनों ही पक्ष उनके अप...
ये थी समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट। उधर तेलंगाना पुलिस ने कल दावा किया कि हैदराबाद में एक डॉक्टर के साथ रेप कर उन्हें जिंदा जलाने के मामले से जुड़े चार अभियुक्तों की एनकाउंटर में मौत हो गई। पुलिस के दावे पर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। पीड़ित के पिता समेत कई लोगों ने पुलिस को बधाई दी, वहीं कई लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्हें इसमें क्या खतरे दिखाई दे रहे हैं, सुनिए सिंधु वासनी की रिपोर्ट।
जिंदाबाद का शोर मचाती और जश्न मनाती ये आवाजें दक्षिण भारत के शहर हैदराबाद से आ रही हैं। वही हैदराबाद जहां पिछले हफ्ते एक लड़की से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। ये आवाजें हैदराबाद पुलिस की उस कार्रवाई की सराहना कर रही हैं जिसमें पुलिस ने बलात्कार के सभी चारों संदिग्ध अभियुक्तों को एक कथित मुठभेड़ में मार दिया। ये खुशी सिर्फ हैदराबाद के आम लोगों तक सीमित नहीं है, नेताओं, बॉलीवुड सितारों और खिलाड़ियों का एक तबका भी इस पर खुशी जता रहा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग पुलिस की वाहवाही कर रहे हैं। एक ऐसा वर्ग भी है जो न सिर्फ पुलिस के दावों पर सवाल उठा रहा है बल्कि लोगों के इस तरह खुश होने पर चिंता भी जता रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह पुलिस की इस कार्रवाई की टाइमिंग और तरीके दोनों पर सवाल उठाते हैं।
पहली बात तो ये कि 3 बजे सवेरे ले जाने की क्या जरूरत थी। नहीं, अगर आप सीन रिक्रिएट करना चाहते हैं तो दिन में जाइए और दिन में लेकर जाइए। 3 बजे ले जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। 3 बजे तो आदमी जाता है जब कहीं किसी खास ऑपरेशन में जाता है और यू वांट टू सरप्राइज द एडवर्सरी। कहानी जरा सा में मतलब बहुत कमजोर कहानी लग रही है और अविश्वसनीय सी कहानी लग रही है। और मतलब अगर सारी बातों पे विश्वास भी कर लिया जाए तो मैं कहूंगा कि बड़ा अनप्रोफेशनल ढंग से उन्होंने सारा काम किया है। और ऐसी परिस्थितियां उन्होंने होने ही क्यों दिया जहां कि उनको गोली चलाने के लिए विवश होना पड़े।
प्रकाश सिंह पुलिस के उस दावे पर भी हैरत जताते हैं जिसमें उन्होंने हथियार छीने जाने की बात कही है।
भाई कैसे छीन लिया यार, आप पुलिस कर्मी हो या क्या हो, तमाशा हो, मतलब कोई आपके हाथ से छीन लेगा? आप उसको अपराधी को ले जा रहे हैं और आपका ने आपसे छीन लिया।
मशहूर सामाजिक और महिलावादी कार्यकर्ता कमला भसीन इस पूरे प्रकरण को डरावना बताती हैं।
सवाल ही नहीं उठता कि इसको ठीक मानने, और वो पुलिस जो FIR दर्ज नहीं करती, जो लड़की के माँ बाप को भाषण देती है, उसको क्या करना चाहिए था? अब सडनली जाके निहत्थे लोगों को वहाँ ले जाके उनको कहती है कि एनकाउंटर में मार दिया, मतलब किस तरीके का झूठ। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ और बहुत ही डरावनी चीज इन्होंने की है। एक और जो लोगों में मॉब मेंटालिटी आ रही है कि इनको हमें दे दो, हम लिंच करेंगे, और उस पर इन लोगों ने जाके ये कर दिया। और मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान में ये होने लग गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। कल फेमिनिस्ट से कोई नाराज होगा, मुझे आके लिंच कर देंगे। कल आपके किसी रेडियो प्रोग्राम से कोई को दुखी होगा तो वो आपको आके लिंच कर देंगे। मतलब 10 डिसाइड कर लें और आके मारते हैं किसी को भी।
कमला भसीन मानती है कि धीमी पुलिसिया और अदालती कार्यवाही की वजह से आम जनता का न्यायिक तंत्र से भरोसा कम हुआ है, लेकिन इसका हल वो नहीं है जो हैदराबाद पुलिस ने किया। तो फिर हल है क्या? कमला भसीन इसका भी जवाब देती हैं।
कानून, मुझे लगता है कि वर्मा कमेटी ने बहुत बेहतर कानून बनाए, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है ना, तो कोर्टों को बढ़ाया जाए, उनकी तादाद बढ़ाई जाए, फास्ट वो सब किया जाए। तो एक तरफ तो क्यूरेटिव चीज को हमें इम्प्रूव करना है, लेकिन मेरा जोर प्रिवेंटिव पर भी बहुत होता है कि क्या हो रहा है इन मर्दों को कि ये इस तरह से अपनी ताकत दिखाते हैं। हम सब जानते हैं कि रेप एक सेक्सुअल क्राइम ही नहीं है, ये एक पावर का क्राइम है। अपने से कमजोर किसी को पकड़ लो, उनके साथ काम किया जाए, मर्दों के साथ मर्दानगी पर काम किया जाए, लड़कों के साथ काम किया जाए, अल्टीमेटली वही करना पड़ेगा, और लड़कियों को और हिम्मतवर बनाया जाए और बाहर भेजा जाए।
फिलहाल इस कथित एनकाउंटर पर तेलंगाना हाई कोर्ट की सुनवाई का इंतजार है जो सोमवार सुबह 10:30 होगी। सिंधु वासिनी, BBC दिल्ली।
BBC इंडिया बोल।
अभियुक्त को सजा देने का अधिकार अदालत का है, पुलिस का नहीं।
फिर भी तेलंगाना पुलिस ने 4 रेप अभियुक्तों को मार डाला। हैदराबाद की कथित पुलिस मुठभेड़ और तमाम अनुत्तरित सवाल, जवाब कौन देगा? इस बार इंडिया बोल इसी विषय पर होगा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 7 दिसंबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब बात झारखंड की, जहां आज विधानसभा की 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें मुख्यमंत्री रघुवर दास की सीट भी शामिल है। हमारे साथी रजनीश कुमार इस वक्त जमशेदपुर में हैं और फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रजनीश, स्वागत है आपका। चुनाव का दूसरा चरण किस तरह की गहमा गहमी देख रहे हैं आप वहाँ?
वात्सल्य, दूसरे चरण में 20 सीटों पर मतदान है और 20 सीटें जो है वो जिनमें से 14 सीटें कोल्हान प्रमंडल में है और यहाँ पे जेएमएम का गढ़ माना जाता है।
जी,
हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को, जेएमएम को 8 सीटें और बीजेपी को 8 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार माहौल 2014 के चुनाव से बिल्कुल अलग है।
जी,
बीजेपी कोशिश कर रही है कि इस चुनाव को भी राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर लड़ा जाए, जिसमें कि राम मंदिर के फैसले को बता रही है कि उसकी कोशिश की वजह से वहां पे मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने की बात को भी बीजेपी अपनी रैलियों में उठा रही है, लेकिन ये जो मुद्दे हैं वो उच्च मध्यम वर्ग में इन मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन गाँव में ये मुद्दे बिल्कुल गायब हैं। गाँव में लोग बात कर रहे हैं रोजगार की, रोजी रोटी की, सड़क की, बिजली की, स्कूल की, और इस मोर्चे पर रघुवर दास सरकार को विपक्ष बुरी तरह से घेर रहा है और रघुवर दास को इस पे जवाब देना पड़ रहा है।
जी, और खास तौर पर रघुवर दास वहाँ इस फेज में, खुद भी उनकी सीट पर मतदान हो रहा है, तो किस तरह से वो जवाब दे पा रहे हैं?
जमशेदपुर जो इलाका है वात्सल्य, वो टाटा के अंदर आता है, जिसमें कि बिजली, पानी, सड़क और रोजी रोटी का जो मसला है वो सरकार से बाहर का है। वहाँ पे वो टाटा कंपनी इन सारी चीजों को देखती है, तो वहाँ पे ये चीजें नहीं है और वहाँ पे जो मतदाता है वो मध्य वर्ग के मतदाता है, तो वहाँ पे ये चीजें चल सकती है। जो सरयू राय बागी है, जो कि दास कैबिनेट में मंत्री भी थे और मुख्यमंत्री रघुवर दास को टक्कर दे रहे हैं, तो इन दोनों में ही मुकाबला है। गौरव वल्लभ के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो तीसरे नंबर पे हैं।
जी,
और सरयू राय और रघुवर दास में जो टक्कर, कई लोग तो कह रहे हैं कि करीबी का टक्कर है, हो सकता है क्योंकि कोई बड़ा उलटफेर हो जाए, लेकिन बीजेपी वहां पे ताकतवर पार्टी रही है झारखंड बनने के बाद से ही,
लगातार असर दिखाती रही है। मैं बस एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुद्दों की बात है, तो लोग आज जो वोट करने जाएंगे, आपको क्या लगता है कि मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे उनके, स्थानीय मुद्दे, या जिस तरह से बाकी जगह माहौल दिखता रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दे बाद में हावी हो जाते हैं?
यहाँ पे वात्सल्य, उस तरीके से राष्ट्रीय मुद्दे हावी नहीं है, क्योंकि अगर जमशेदपुर सीट को छोड़ दें तो बाकी जो सीटें हैं वो ग्रामीण सीटें हैं, जैसे दक्षिण छोटा नागपुर की 6 सीटें हैं, कोल्हान प्रमंडल की 10-14 सीटें हैं, तो यहाँ पे स्थानीय मुद्दे हैं, जिसमें कि आदिवासियों के बीच काश्तकारी कानून को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसे कि रघुवर दास सरकार को इसे रोकना पड़ा था, वो इसमें संशोधन करना चाहते थे ताकि विकास कार्यों के लिए जमीन आसानी से ली जा सके।
जी,
और इस मुद्दे को विपक्ष ने सबसे ज्यादा उठाया था और रघुवर दास सरकार को इस बिल को रोकना पड़ा था।
जी,
तो मुद्दे तो हैं, मुद्दे राष्ट्रीय
मुद्दे हैं और उन्हीं पर लोग आज वोट करेंगे। बहुत शुक्रिया रजनीश इस पूरे अपडेट के लिए। और अब जान लेते हैं कि आज के अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से जगह दी है। अखबारों के साथ मौजूद हैं तन्वी। जी तन्वी।
जी वात्सल्य, देश को झकझोर देने वाली रेप की घटनाओं को अखबारों ने आज अपनी बड़ी खबर बनाया है। हैदराबाद वेटनरी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस पे अमर उजाला लिखता है, पुलिस का इंसाफ, हैदराबाद में हैवानियत।
जी, जो एनकाउंटर हुआ है उस खबर की आप बात कर रहे हैं।
जी, और इसी खबर पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, अपनी करतूत से मारे गए दरिंदे। वहीं जनसत्ता इसी खबर को कवर करते हुए लिखता है, सोशल मीडिया पर कहीं समर्थन तो कहीं सवाल, एनकाउंटर पर जश्न और सवाल। ये नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। उन्नाव रेप केस की बात करें तो उन्नाव रेप पीड़िता ने दम तोड़ा, आरोपियों ने परिजनों को दी धमकी, मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित। ये खबर राष्ट्रीय सहारा समेत सभी अखबारों में है। राष्ट्रपति का ये बयान कि पॉक्सो एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अंतर्गत दोषितों के पास दया याचिका का अधिकार ना हो, इस खबर को राष्ट्रीय सहारा ने पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं हिंदुस्तान अखबार ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर संकट से बाहर निकल आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार के सुधार के उपायों से यह संभव हुआ है। उन्होंने बैंकिंग कर्मचारियों से बिना किसी डर के कारोबारी फैसले लेने की अपील भी की है।
जी,
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जीएसटी दरों में वृद्धि हो सकती है। अखबार के मुताबिक जीएसटी काउंसिल जल्द ही जीएसटी के बेस स्लैब को 5% से बढ़ाकर 9-10% कर देगा। इसके अलावा 12% वाले स्लैब को 18% जीएसटी स्लैब से मिलाने की बात भी कही गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक अन्य खबर के मुताबिक नेटफ्लिक्स अगले साल ज्यादा भारतीय कंटेंट पेश करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये खर्च करेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आरबीआई सर्वे के हवाले से बताया है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट बीते 5 साल में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है।
जी, बहुत शुक्रिया तन्वी अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के एक नौसेना ठिकाने पर एक हमलावर ने गोलियां चलाकर 3 लोगों की जान ले ली। इस मामले में 8 अन्य लोग घायल हुए हैं। हमलावर सऊदी अरब का नागरिक था। वो सऊदी एयरफोर्स से जुड़ा था और ट्रेनिंग के लिए पेंसाकोला नौसेना ठिकाने पर आया था। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में हमलावर की भी मौत हो गई। हमलावर का नाम मोहम्मद सईद बताया गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि सऊदी अरब के किंग सलमान ने घटना पर दुख जाहिर किया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि किंग सलमान ने कहा कि सऊदी अरब के लोग हमलावर की जघन्य कार्रवाई से गुस्से में हैं। ये व्यक्ति किसी भी सूरत में सऊदी अरब के लोगों की भावनाओं का इजहार नहीं करता था। सऊदी अरब के लोग अमेरिका के लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। किंग ने मुझसे जो कहा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक भयावह घटना है। हम इसकी तह तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले की जाँच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं तन्वी। विराट कोहली की कप्तानी पारी के दम पर भारत ने कल हैदराबाद में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने भारत के सामने जीत के लिए 208 रन का लक्ष्य रखा था। कप्तान विराट कोहली के नाबाद 94 रनों की मदद से भारत ने ये लक्ष्य 8 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। मैच का टॉस भारतीय कप्तान विराट कोहली ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वेस्टइंडीज के ओपनर लैंडल सिमंस सस्ते में आउट हो गए, लेकिन दूसरे ओपनर लुइस ने किंग के साथ मिलकर पारी को संवारा। लुइस 40 रन बनाकर आउट हुए। उनकी जगह आए शिमरॉन हेट मायर ने उमदा बल्लेबाजी करते हुए 56 रन बनाए। कप्तान केरन पोलार्ड ने 19 गेंदों में 37 और जेसन होल्डर ने सिर्फ 9 गेंदों में 24 रन बना दिए। वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट पर 207 रन का मजबूत स्कोर बनाने में कामयाब रही। 208 रन का लक्ष्य लेकर फील्ड पर उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ओपनर रोहित शर्मा सिर्फ 8 रन बना सके, लेकिन दूसरे ओपनर केएल राहुल ने कप्तान विराट कोहली के साथ मिलकर जीत का आधार तैयार कर दिया। इन दोनों के बीच 100 रन की साझेदारी हुई। राहुल 62 रन बनाकर आउट हुए। ऋषभ पंत 18 और श्रेयस अय्यर सिर्फ 4 रन बना सके, लेकिन कप्तान कोहली जमे रहे और टीम को जीत दिलाने के बाद ही पवेलियन लौटे। नाबाद 94 रन की पारी में कोहली ने 50 गेंदों का सामना किया। उन्होंने 6 चौके और 6 छक्के जमाए। अपनी इस पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। हैदराबाद में मिली जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। सीरीज का दूसरा मैच 8 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। खेल समाचारों में इतना ही।
आपसे विदा लें उसके पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। उन्नाव रेप मामले की पीड़िता की कल देर रात दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद की एक वेटनरी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए 4 अभियुक्तों के शवों को सोमवार तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट इस मामले में सोमवार सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगा। उत्तरी पूर्वी केन्या में एक बस पर बंदूकधारियों ने हमले में कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। ब्रिटेन के आम चुनाव में पहले मौजूदा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन टेलीविजन डिबेट में शामिल हुए और जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने की मांग के साथ स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कल लोगों ने मार्च निकाला। बीबीसी समाचार।
वक्त आपसे विदा लेने का हो रहा है। नमस्कार भारत में आज के लिए इतना ही। स्टूडियो की कमान थी दीपक जसरोटिया के हाथ। दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक तमाम खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।